सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ नारद जी पधारेंगे, उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत सीजन 4 में। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 5th एपिसोड की। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ कैसे बना। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने पांडवों के हस्तिनापुर वापस लौटने की कथा सुनी। एपिसोड की शुरुआत में हमने जाना कि राजा धृतराष्ट्र, कर्ण और दुर्योधन तीनों पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से भी सलाह लेने के लिए कहा, जिसके बाद पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने राज्य को दो भागों में बांटने के लिए कहा, जिस पर कर्ण ने टिप्पणी करते हुए पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को दोष लगाते हुए कहा कि वे धृतराष्ट्र के विरुद्ध ही बातें करते हैं और उनका अहित ही चाहते हैं। सभी की बातें सुनने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाने का निश्चय किया। सभी पांडव हस्तिनापुर लौट आए और खुशी खुशी अपने नगर में विहार करने लगे। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। कुछ समय बाद राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म ने पांडवों को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, जो मैं कहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। मेरी ही आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया है और पालन पोषण भी किया है। पांडु बहुत बलवान और पराक्रमी थे। वे हमेशा मेरे कहे अनुसार ही कार्य किया करते थे। तुम भी मेरी आज्ञा का ही पालन करो। मेरे पुत्र दुरात्मा हैं। वे हमेशा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। वे हमेशा अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। मेरी बात मानो, तुम सभी खांडव प्रस्थ में निवास करो। वहां तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। तुम ये आधा राज्य स्वीकार करो और प्रसन्नता से वहां निवास करो। विदुर को आदेश देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ। अब इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए है। मैं आज ही कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा। नगर के सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रमुख व्यापारी, प्रजा वर्ग के लोग और बंधु बांधवों को बुलाओ। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ 1000 गायें दो। एक सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मंगाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करधनी, कटिसूत्र तथा उदर बंध भी ले आओ। 1008 हाथी मंगाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हों। पुरोहितों के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जी के जल से नहलाओ। युधिष्ठिर अभिषेक के जल से भीगे हों, समस्त आभूषणों से उन्हें वशीभूत किया जाए। उसके बाद उन्हें सवारी योग्य गजराज पर बिठाओ। ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति कर रहे हों। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का प्रसन्न मन से दर्शन करके सभी इनकी प्रशंसा करें। राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार किया था, उसका बदला इसी से पूर्ण होगा। यह सुनकर भीम, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर ने कहा, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण ने भी उनकी बात से सहमति रखते हुए कहा, महाराज, आपका यह विचार उचित है। आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो पूर्ण कर दीजिए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, भगवान व्यास, श्री कृष्ण और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर संयम पूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सबने यह आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम सारी पृथ्वी को जीत कर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय आदि सारे यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। ऐसा कहकर उन सब ने अपने आशीर्वाद द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया। आभूषणों से विभूषित राजा युधिष्ठिर ने धन का दान किया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार करके उनकी स्तुति की। राजाओं ने भी युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर वे गजराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। वहीं यह सब देखकर दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो रहे थे। अपने पुत्रों को शोक में डूबा हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण और कौरवों के सामने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तुमने वह राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो किसी भी आम व्यक्ति के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कथार्थ हो गए, आज ही खांडवप्रस्थ चले जाओ। वही समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों ने बुद्ध पुत्र के लोभ से खांडवप्रस्थ को नष्ट कर दिया था, इसीलिए तुम खांडवप्रस्थ नगर को दोबारा बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे। वह नगर तथा राष्ट्र समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न है। तुम भाइयों सहित वहीं जाओ। राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडवप्रस्थ की ओर चले गए। असल में खांडवप्रस्थ भयंकर वन के रूप में था। देखते ही देखते वे खांडवप्रस्थ जा पहुंचे। पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्ग लोक की तरह शोभायान कर दिया। फिर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने बिना कहे ही उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी, विश्वकर्मन, आप जाकर खांडवप्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इंद्रदेव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडवप्रस्थ में जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विश्वकर्मन, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी अर्थात इंद्रलोक के समान एक महान नगर का निर्माण करो। इंद्र के निश्चय किए हुए अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। अपने नगर में शांति कर्म करा के सभी पांडवों ने वेद व्यास जी को गवाह बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप कराया। उसके चारों ओर समुद्र के जल से भरी हुई खाई बनाई गई जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चार दीवारी शोभा दे रही थी जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी। उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दोनों पंख फैलाए गरुड़ खड़े हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक मेघों की घटा के समान सुशोभित और मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी ब्राह्मणों का पूजन किया। धीरे धीरे वह नगर लोगों और गायों से संपन्न हो गया और दिनों दिन वहां खेती में वृद्धि होने लगी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो वह हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभिष्ट हो उसी कार्य को कराने के लिए आप हमें अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फल स्वरूप यह राज्य प्राप्त हुआ है। जो राज्य आपके बाप दादाओं का ही है वह आपको कैसे नहीं मिलता? धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे? आप इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा को धारण किए। संक्षेप में आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है कि ब्राह्मणों की सेवा करिए। आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ नारद जी पधारेंगे, उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण माता कुंती के पास गए और इस प्रकार बोले, बुआ जी नमस्कार, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कुंती ने कहा, केशव, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम इन पांडवों को हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे आशीर्वाद से ही फल फूल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को प्रणाम किया और कहा, निश्चित ही मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर श्री बलराम के साथ वे वहां से विदा लेकर द्वारकापुरी को लौट गए। अब भगवान विश्वकर्मा, भगवान व्यासदेव, श्री कृष्ण, बलराम सभी विदा लेकर इंद्रप्रस्थ से चले गए हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि नारद जी पांडवों से मिलने के लिए क्यों आने वाले हैं। और अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो लौटिएगा हमारे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।